संतप्त मानस शांत हूं जिनकी कल अमूर्त दृष्टि अंग तक चर्चा हो गई थी, चिकित्सा अमूर्त दृष्टि अंग की। अब आज उपगूहन और स्थितिकरण अंग की बात करते हैं। उपगूहन अंग का दूसरा नाम उपब्रह्मण भी है। उपगूहन माने होता है छिपाना और उपब्रह्मण माने होता है बढ़ाना। अपने दूसरे के दुर्गुणों को छिपाना और अपने जो है ना गुण हैं उनको प्रकट करना, ये एक तरह से उपगूहन अंग है। और धर्म से यदि हम विचलित हो रहे हों तो स्वयं या साधन भी दोनों को उसी में स्थिर करना, उसका नाम स्थितिकरण अंग है। 233 और 234 में गाथा अपन पढ़ते हैं, जो सिद्ध भक्ति जुत्तो
सो उपगूहण कारी सम्माधिट्ठि मुणे दब्बो उम्मंगं गच्छन्तं सदंति विमग्गे ठवेदि जो चेदा सोठिति करिणा जुत्तो सम्माधिट्ठि मुणे दब्बो। जो सिद्ध भक्ति योक्त है सब धर्म का गोपन करे बियाते मांगो पन करी सद दृष्टि है यह जानना उन मार्ग गत निज भाव को लावे स्वयं सन मार्ग में बियाते माथिति करण सम्य दृष्टि है यह जानना।
जो चेतता सिद्धों की भक्ति से युक्त हैं और पर वस्तुओं के सभी धर्मों को गोपने वाला है उसको उपगूहन अंग का धारी सम्य दृष्टि जानना। और जो चेतता उन मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को सन्मार्ग में स्थापित करता है वह स्थिति करण अंग का धारी सम्य दृष्टि जानना चाहिए। अब ये तो मूल गाथाओं का अर्थ है। इसमें जो आत्मख्याति टीका है उस आत्मख्याति टीका में उपगूहन की तो वो बात ही नहीं करते हैं। देखते हैं सम्यक दृष्टि जीव संकोच कीर्ण एक ज्ञायक भावमय होने के कारण समस्त आत्मशक्तियों की वृद्धि करने वाला होने से उपब्रह्मक है, आत्मशक्ति बढ़ाने वाला है, उपब्रह्मण अंग का धारी है। मतलब मूल गाथा में लिखा है कि सभी पर वस्तुओं को गोपन करने वाला है और टीका में लिखा है कि अपने आत्मशक्तियों को बढ़ाने वाला है। सीधा सच्चा अर्थ यह है कि वो पर पैसे लक्ष्य हटाकर अपने आत्मा पर लक्ष्य ले जाता है तो पर का गोपन करने वाला हो गया और अपने आत्मा का उपभिन्न आत्मा को बढ़ाने वाला हो गया। और फिर आगे लिखा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग से चित होने पर स्वयं को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर देने से स्थितिकरण अंग का धारी है, इसलिए उसे शक्ति की दुर्बलता से होने वाला और मार्ग से च्युत होने वाला बंध नहीं होता अपितु निर्जरा ही होती है। कि दोनों का मिला करके अर्थ किया है जैसा कि पिछली गाथा में किया था ना, टीका में। आप ऊपर दोनों तरफ संस्कृत में यदि देखेंगे, पिछले भी जो है ना निर्दुकुत्सांग और अमूर दृष्टि और ये उपगुहन और स्थितिकर्म, तो चारों की दो दो पंक्तियां हैं। आपके पास एक किताब है ना, तो ऊपर की पंक्तियों में तो बिल्कुल एक सी हैं, इसलिए मैं कहता हूं इसमें संस्कृत में देखो। अब ऊपर से देखना, यह तो ही सम्यक दृष्टि, चारों के अर्थ यतो ही सम्यक दृष्टि से शुरू होते हैं। अब टंकोत्कीर्ण गायक स्वभाव मयत्व ने सर्वेश्वी भावेशु, मन इतना सब में बिल्कुल एक सी पंक्ति है ना चारों में। और फिर अंत में देखो, थोड़ा सा अगले नाम बदल दो, नाम छोड़ दो, तो फिर ततो अमूर दृष्टि कृत नास्ति बंधा किंतु निर्जरैव, ऐसे ही इसमें नास्ति बंधा किंतु निर्जरैव, चारों में अंत में ये मिलेगा। उसमें निर्विचिकित्साकृत बंध नहीं होता, उसमें मूल दृष्टिकृत बंध नहीं होता, इसमें उपगुहनकृत बंध नहीं होता, और इसमें स्थिति का आत्मा से चलित होने से संबंधी बंध नहीं होता, और निर्जरा ही होती है, और आत्मा के विशेषण वही के वही हैं। ये चार बातें बताई हैं नवस्तर के, वे पर पदार्थों के प्रति उनके चित्त में कोई गिलानी का भाव नहीं होता। वो पर पदार्थ कैसे ही हो, उनका प्रणमन कैसे ही हो, उससे हमको क्या लेना देना है, उससे रुचि भी नहीं है तो गिलानी भी नहीं है। कल परसों अपन ने ये बात बताई थी कि हमें राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। अब अगर मूल दृष्टिकृत बंध नहीं होता, माने तत्व के बारे में, आत्म तत्व के बारे में मूल दृष्टि नहीं है, माने मिथ्या बुद्धि नहीं है, ये मूल दृष्टिकृत बंध नहीं होता, और अमूल दृष्टि माने उसके बारे में उसकी समझ पूरी पक्की और सच्ची है। और अब उपगुहन में कहते हैं तो आत्म गुणों की वृद्धि करने वाला है वो, और जब आत्मगुणों की वृद्धि करेगा तो पर का उपगुहन हो गया, उपगुहन हो गया माने पर के संदर्भ में वो मौन हो गया। उसका आगे के आचार्यों ने जो अर्थ किया ना, तो वो उनको कर दिया कि वो दूसरों के दोषों को छिपा रहे। छड़ाला में क्या आता है, पंक्ति है यार, उपगुहन की निज गुण अरुपर अवगुण ढांके। अपने निज गुणों को ढके और पर के अवगुण को ढके। अब इसमें तो निज गुणों की वृद्धि लिखी है ना, क्लियर है ना, निज गुण अरुपर अवगुण ढांके हैं, तो निज गुणों को अपने गुणों को ढके और दूसरे के अवगुणों को ढके। जबकि इसमें तो निज गुणों की वृद्धि करे है, ढकने की बात नहीं है ना। इस तरह के हिंदी प्रज्ञानुवाद में कई जगह गड़बड़ियां हुई हैं। जैसे शांति पाठ में एक आता है ना संस्कृत में, दोष बादे च मौनम, संस्कृत का शांति पाठ होता है, उसमें लिखा कि दोषों के कहने में मैं चुप रहूं, और हिंदी में अनुवाद कर दिया दोष ढांकूं सभी का। अब दोष बादे च मौनम और दोष ढांकूं सभी का, ये दोनों का एक ही अर्थ है क्या, ये उसका पद्यानुवाद है? क्योंकि एक तो उसके माने बारे में हम चुप हैं, ना हम उसको ढक रहे और ना हम उसके बारे में उसको खोल रहे, दुनिया को कहते फिर रहे हैं कि उसमें ये खराबी है, उसमें ये खराबी है। और मौनम का तो अर्थ यह है और उसको ढकना, हम उसमें प्रयत्न पूर्वक उसको ढक रहे। वास्तव में यहां भी पर के संदर्भ में उपगूहन का अर्थ यही है कि उसके बारे में हमने अपने दृष्टि से उसे हटा दिया। जगत तो जगत जैसा है, हम कहां कहां उलझेंगे। और प्रत्येक पदार्थ नित्य परिवर्तनशील है, त्रिकाली ध्रुव भी है, लेकिन यहां वो परिवर्तनशील जो पक्ष है उसकी चर्चा करते हैं। एक कह रहे कि अभी कल बुरा था, आज अच्छा है, आज अच्छा है कल फिर बुरा हो जाए, एक एक क्षण में उसकी परिणति बदलती है। क्यों? अब जब हमने उसकी परिणति बुरी देखी तो बुरी देखकर हम उसकी निंदा करने लग गए, तब तक उसकी परिणति सुधर गई हो, और हम उसकी परिणति देखकर अच्छी देखकर प्रशंसा करने लग गए, तब तक उसकी परिणति बिगड़ गई हो। शास्त्रों में एक बहुत बढ़िया उदाहरण आता है इसके लिए। एक मुनिराज थे, वो जंगल में बैठे हुए थे और जंगल में भयंकर आग लग गई। तो वो रिद्धिधारी मुनिराज थे तो चारों तरफ जंगल जलता रहा और उनके चारों तरफ का एरिया बिल्कुल सुरक्षित रहा। तो वहां और भी बहुत से लोग थे, तो उनने देखा चारों तरफ आग लग रही है और हम बीच में हैं, यहां बिल्कुल सुरक्षित हैं, तो क्या कारण है? तो उनने देखा कि एक मुनि महाराज यहां विराजमान हैं, तो ये इनकी वजह से हुआ है। इतने में वे मुनिराज वहां से उठ करके चले गए थे और दूसरे मुनिराज वहां आकर के बैठ गए थे। तो उनने जाकर के उनकी प्रशंसा करना शुरू की कि आपकी वजह से हम बच गए। तो उन मुनिराज को तो पता था कि वो मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, मैं तो अभी अभी आया हूं। लेकिन उनने कहा कि बोल रहे तो बोलो, तो हमें क्या लेना देना, अच्छा थोड़ी प्रशंसा हो रही है, अपनी क्या नुकसान है। तो ऐसी प्रशंसा सुनकर के वे अंदर में गदगद हो रहे थे और वे लोग चले गए। तो वहीं पास में जहां गए वहां केवली भगवान विराजमान थे, तो उनने जाकर उनसे वहां पूछा कि जो मुनिराज अभी जंगल में बैठे थे और उनकी हम बहुत स्तुति करके दर्शन करके आए हैं, तो उनके अभी कैसे परिणाम हैं? भगवान की दिव्य ध्वनि में आया कि यदि वे अभी मरे तो दुर्गति में जाएंगे। तो वे लौट के आए और उनने देखा तब तक उन्हें यहां केवल ज्ञान हो गया था। तो उनने उनसे पूछा कि उनने तो कहा था दुर्गति में जाएंगे और आपको जहां केवल ज्ञान हो गया, ये क्या? तो उनने कहा तुमने ऐसा पूछा था कि इस समय मरे तो उनने उस समय के परिणामों का फल बताया था। मैं कहां जाऊंगा ये पूछते तो वे मोक्ष जाना ही बताते। तो हमारे प्रश्न में और उत्तर में और कथन में कैसे अंतर हो जाता और परिणामों की बदलता, क्योंकि उन्होंने उसके बाद उन्हें एकदम ख्याल आया कि मैं कैसे खोटे परिणामों में चला गया। और उन्होंने अपने परिणामों को संभाला और अंदर में चले गए, अंतर मुहूर्त तक अंदर में रहे तो केवल ज्ञान हो गया। मैं इस बात के लिए उदाहरण दे रहा हूं कि एक एक व्यक्ति के परिणामों का क्या ठिकाना है। हम एक एक समय के परिणामों के आधार पर उसके बारे में अच्छे बुरे का निर्णय कर लेते हैं, ये सही नहीं है। यहां तो आचार्य यही कह रहे कि वो तो गोपन करी कि हमको उससे कोई मतलब ही नहीं है, हरेक के बारे में ये निर्णय करते फिरना, इसकी हमें क्या जरूरत है कि वो अच्छा है या बुरा है। हमें पर्याय की दृष्टि से देखना है। गुरुदेव तो ये बोलते थे कि यदि मैंने किसी को पर्याय की दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ कर देना, क्षमा मांगने के दिन उनके मुख से ये वाक्य निकलता था बोला, क्योंकि ये सामने वाला और मैं स्वयं ये दोनों निश्चय नए से दिव्य दृष्टि से तो स्वयं भगवान स्वरूप ही है ना, और पर्याय तो प्रतिवर्षण बदलती रहती है। तो मैं किसी को उस पर्याय के पक्ष से देखूं ही क्यों, क्योंकि उसके पर्याय के परिवर्तन से मेरे को कोई लाभ हानि नहीं है। ये तो उपगुहन अंग में होगा, और स्थितिकरण अंग में वो तो कहते हमें पर से क्या लेना देना टीका में। इसमें मैं यदि अपने धर्म मार्ग से च्युत हो रहा हूं तो उसे उसमें ही स्थिर करना, धर्म मार्ग में उसका नाम स्थितिकरण अंग है। तो ये तो जब चुगे तब की बात है ना, क्यों कहते हमेशा ही चिग रहे ना। एक मुनिराज हैं, इस शुभोपयोग में आए तो चिग गए, फिर शुद्धोपयोग में गए धनंदर में हो गए, तो शुभोपयोग में आए तो उन्होंने अपने को शुद्धोपयोग में स्थापित किया तो ये स्थितिकरण हो गया ना। और फिर जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक हर अंतर मुहूर्त में चिगना ही है ना। क्यों भगवान आदिनाथ 6 महीने तक उपवास किया और 6 महीने तक रोजाना निकले भोजन को, अंतराल हो गया नहीं मिला तो साल भर तक वे अपनी बात पे दृढ़ रहे ना, नहीं मिली रोटियां तो नहीं मिली, चिंता नहीं करी क्यों, और 6 महीना तो सामायिक में रहे थे, इससे ज्यादा और क्या, क्यों वे तो चिकते ही नहीं है ना जने कभी, तो वे कहां स्थितिकरण करे। अरे भैया केवल ज्ञान नहीं हुआ 1000 वर्ष तक तो हर अंतर मुहूर्त में चिगे है ना, माने शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आ गए कल में है ना, तो फिर अंतर अपने अंदर में जाके आत्मा का स्थितिकरण किया। अरे दूसरी जगह ये भी आता है कि कोई व्यक्ति चिग रहा हो तो उसे उपदेश आदि देकर उस धर्म में स्थिति करना, ये स्थितिकरण अंग है आता ना। तो किसी जगह ये भी आता है कि अपन चिग रहे हैं तो अपने को करना और दूसरा चिग रहा हो तो उसको करना, ऐसे तीनों तरह के कथन मिलते हैं कान में है ना। अब दूसरे को चिकना कम मानते हैं, देखो अच्छे अच्छे विद्वानों की बात करता हूं, अपनी ही बात करते हैं कि विद्वान होने के बाद भी वर्षों तक 20 वर्ष तक यही मानते रहे कि कोई धर्म से चिगे, और चिगे माने यानी वो मुनि था तो वो ग्रस्त बन जाए, वो कपड़ा पहनने लगे, इसको हम चिगना मानते। क्यों आलू नहीं खाता था तो आलू खाने की इच्छा उसे हो जाए और वो आलू खाने लगे तो हम उसे समझाएंगे देख भैया इसमें अनंत जीव है। रात्रि भोजन नहीं करता था तो रात्रि भोजन करना लगे तो हम उसे समझाएं, इसी को हम स्थितिकरण समझते थे। जब हम समझते थे 20 वर्ष तक तब मुझे बार बार विकल्प आता था कि ये अंग हमारा कैसा हुआ कि जब कोई डिगे तब उसे हमें स्थितिकरण करने का मौका मिले और कोई डिगे ही नहीं तो देखो एक बहुत मार्मिक बात यह है कि अंग उसे कहते हैं जो 24 घंटा हमारे साथ रहे। ये अपने आठ अंग ना, हाथ पैर अंग बोलते हैं ना, अष्टांग नमस्कार, पंचांग नमस्कार, ये उंगली है उपांग, ये हाथ है अंग, ये जानते आप। तो ये अंग कभी रहे और कभी नहीं रहे ऐसा हो सकता है? आठ अंग है ना, दो हाथ दो पैर पीठ छाती मस्तिष्क, ऐसे माने जाते हैं ना, आठ अंग होते हैं। तो इनमें कोई कभी रहे कभी नहीं रहे ऐसा होता है? ये तो नहीं रहेगा तो हम ही नहीं रहेंगे। आठों अंग हमेशा रहना चाहिए ना, तब तो वो परिपूर्ण आदमी कहलाए। तो सम्यक दर्शन के आठ अंग भी हमेशा रहना चाहिए, इस प्रकार घटित होना चाहिए। इसलिए स्थितिकरण अंग भी उपगुहन अंग भी पराधीन नहीं होना चाहिए, अपने ही आत्मा में घटित होना चाहिए। इस दृष्टिकोण से इसमें चर्चा की है। इस प्रकार साधर्मियों के दोषों को उजागर न करना और अपने गुणों में निरंतर वृद्धि करना उपभ्रंघन अंग है। दोनों बातें ले ली ना, साधर्मियों के दोषों को उजागर न करना और अपने गुणों में निरंतर वृद्धि करना। देखो उजागर न करना ये लिया, ढकना नहीं लिया। ढकने में और उजागर नहीं करने में बहुत अंतर है ना। और मालूम कैसे कैसे उदाहरण है, मैं जब पढ़ता था 10-11 वर्ष का था, रतनगंज साहब का था, तो उसमें 80 अंकों का रतनगंज साहब का चार में से प्रश्न पत्र आता था और 20 अंक का मोक्ष मार्ग की सच्ची कहानियां इस नाम से एक किताब थी, उसमें से प्रश्न आता था। और मोक्ष मार्ग की सच्ची कहानियां एक एक अंग की एक एक पुष्टि की कहानियां थी, ऐसी कहानियां थी उसमें कि सम्यक जाते हैं ना, तावदांग मिंटो रोंगो ततो अनंतमत स्मृता, ये आते हैं ना आठ, कि अन्यंचो निशांकित अंग में प्रसिद्ध हुआ, अनंतमति निकांक्षित अंग में प्रसिद्ध हुई। फिर ऐसा आते हैं आठों अंगों के आठ आते हैं और उन्हीं की आठ कहानियां लिखी थी उसमें। ऐसे 20-22 कहानियां थी लेकिन वो आठ अंगों संबंधी आठ कहानियां थी। तो उस वक्त मेरे को बहुत अटपटा लगता था, कभी हृदय में स्वीकृत नहीं हुई 10 वर्ष की उम्र में भी। कौन सी बात, अब आप सोच रहे हो 10 वर्ष की उम्र में कैसे पढ़ते होंगे। अरे भाई तुम लोग तो 10वीं पास करके आते हो जब तुम्हें धर्म पढ़ने को मिलता है, हम तो दूसरी पास भी नहीं थे और सीधे विद्यालय में भर्ती हो गए थे और लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़ने लग गए थे। अब 10वीं वालों का पसीना छूटता है, दूसरी वालों का क्या होता होगा। खैर उस बात को जाने दो, लेकिन तो इसलिए हमारे 10-11 की उम्र में चले गए पढ़ने और वहां ये कोर्स में था रतनगंज साहब का चार और उसकी मुख्य मार्ग की सच्ची कहानियां। सबसे पहले मुझे अटपटा ये लगता था कि गजब हो गया, सम्यक दृष्टि के निशांकित अंग में एक चोर प्रसिद्ध हो गया। मैंने चोर सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि से शब्द व्यसन का त्यागी हो तो वो सम्यक दर्शन की बात हो सकती है एक। और दूसरी गजब की बात ये लगती थी कि वो चोर की जो कहानी है वो इतनी विचित्र है कि वो चोरी वेश्या के कहने से चोरी करने गया, क्योंकि वेश्या ने कहा कि मैं तो रानी का हार लूंगी, तो चोर रानी का हार चुराने गया, वहां पुलिस वाले पीछे लग गए, तो वो भाग रहा था और पुलिस पीछे से आ रही थी तो वो घबरा गया, आ गया कि पुलिस पकड़ लेगी। तो एक सेठ जी एक छींके पर बार बार चढ़ते थे और उतरते थे, तो उस चोर ने पूछा क्या कर रहे हो, कि भई ये आकाशगामी विद्या सिद्ध करने की तरकीब है, इस पे बैठो, ये नवोकार मंत्र पढ़ो और इसको एक दफे पढ़ो और एक सिंका काट दो, एक रस्सी काट दो उसकी, ऐसे 108 रस्सियां थी, काटते जाओ तो तुम जमीन पर नहीं गिरोगे, आकाश में उड़ जाओगे, तुम्हें आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो जाएगी। अब वो शेर जी बार बार उस पर बैठते थे, चक्कू लेकर नवोकार मंत्र बोलते थे, वो उसे काटने की कोशिश करते थे और डर के मारे नीचे उतर आते थे। तो चोर ने सोचा कि भैया अब मुझे तो पुलिस पकड़ने वाली है, यदि ये विद्या मुझे सिद्ध हो गई तो मैं भाग जाऊंगा, मुझे पुलिस नहीं पकड़ पाएगी। इसलिए वो उस पर बैठ गया और उसने बोला, आड़म ताड़म कुछ न जानम, सेठ वचन परिणामम, वो एक साथ सब रस्सियां काट दी और वो उसके आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई, क्योंकि उसे शंका नहीं हुई जनन भगवान के वचनों में। जनन भगवान के वचन थे कि सीता काट दो तो तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो जाए। एक एक कहानी थी, मेरे गले तो नहीं उतर दी गई, कैसी ये चोर ने यहां कहा ये आड़म ताड़म कछू न जानम, ये नमोकार मंत्र का सम्मान है कि अपमान है? यहां तो उसी रतगण साहब का तार में ये लिखा था, नहीं अक्षरो न्यूनम मंत्रो निहंती विष वेदनाम, अक्षर से हीन मंत्र हो तो सांप की विष की वेदना को दूर नहीं करेगा। एक अक्षर कम हो मंत्र में तो, यहां तो सभी अक्षर गायब थे। और सेठ वचन परिमाणम, सेठ के वचनों की श्रद्धा है तो वहां तो भगवान के वचनों की जिन वचन में शंका न धार है, यानी सेठ कहां से आ गए? अब वो सेठ भी कैसा जिसे खुद भरोसा नहीं है और बार बार उतर रहा है उतर रहा है। अब हम कहते भी थे ये क्या हुआ, वो सम्मानिष्ठी था जो, तो कहते नहीं नहीं वो बाद में सम्मानिष्ठी हो गया, फिर वो मुख चला गया। तो वो तुम जो कहानी सुना रहे, जो घटना सुना रहे, वो तो ये सुना रहे हो, और बाद की तो बात कोई घटना होगी तो उस वक्त मैंने इस बात की आलोचना करता था हर प्रवचनों में, जब बाद में पंडित हो गया तब भी। अब फिर लोग कहते थे कि सतंग उसमें सावकाचार में समंत भद्र ने लिखी है, पर समंत भद्र आचार्य के प्रति मेरी बहुत अगाध श्रद्धा थी, तो मैं कह समंत भद्र तो झूठ नहीं हो सकते हैं, तो समंत भद्र के विरुद्ध अपन खड़े हो गए ना, तो मैं ये कहता था कि नहीं समंत भद्र ने तो सही लिखा। फिर कैसे सही लिखा? क्योंकि एक कहानी समंत भद्र ने थोड़ी बताई, कहानी तो किसी दूसरे भट्टारक ने लिख दी है, वो उनके दिमाग में कोई चोर होगा क्या जो पहले कभी चोरी करता रहा होगा, बाद में सम्यक दृष्टि हो गया होगा और वो चोरी कहलाता रहा होगा और उसको कोई ऐसी घटना घटी होगी जो जनन भगवान की शंका की बात नहीं हो, तो उसका उन्होंने संकेत किया होगा। इसने आदमी ने ये ठोक दी, उसमें लिखा था मोक्ष मार्ग की सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है तो झूठी कैसे होती है, कौन होती है सर? ऐसे जैसे आठों अंगों की ऐसी ऐसी थी जो बिल्कुल गले उतरने जैसी बात उसमें नहीं थी, कि जिनेन्द्र भगवान के वचनों में शंका नहीं करना। तो वो ये कहते जिनेन्द्र भगवान के वचन माने क्या? तो वे त्रिकाली जो तुम्हारा भगवान आत्मा है, इसका स्वरूप जो उनने बताया है कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, कोई तुम्हारा भला बुरा नहीं कर सकता है, तुम्हारा भला बुरा तुम्हारे परिणामों पर ही निर्भर है, लोग में जिसे हम भला बुरा कहते हैं, ये जनेन्द्र भगवान के वचन हैं और इसमें किसी की शंका नहीं होना। अभी देखिए ये निज गुण अर पर अवगुण ढांके, अब अपने गुणों को ढके, यहां तो लिखा है कि अपने गुणों को उजागर करे, उजागर करे, मैं दुनिया से कहता फिरे नहीं, प्रकट करे उनको, समझे ना, पर्याय में प्रकट करे, अंदर में तो है ही लेकिन वो पर्याय में प्रकट करे, उसका नाम, इसलिए उन्होंने दूसरा नाम रखा उपब्रह्म, क्योंकि उपगुहन शब्द नेगेटिव है ना, उपगुहन संग जो है वो हमने उसका अर्थ छुपाना कर दिया, छुपाना नहीं है, उसके बारे में मौन रहना, मौन रहना नहीं, मैं तो कहता हूं सोचना तक नहीं, क्योंकि सोचते रहे उस पर बोले नहीं, क्यों तो हमारा तो समय खराब हो ही गया ना, उसकी सुरक्षा भई के नहीं भई वो तो बाद की बात है, लेकिन हमारा तो समय खराब, मन खराब हो ही गया ना, तो वो कहते हैं कि हम दूसरे के बारे में हम अपने अपने उपयोग को वहां से हटाएं और अपने आत्मा में लगाएं तो हमारे गुणों की वृद्धि हो, वो उपगुहन अंग है, उपभ्रमण अंग है, और यदि हमारे परिणाम चलित हो रहे हैं तो उन परिणामों को स्थिर करें, वो हमारा स्थिति कारण अंग है ना। तो इसलिए जो अपन ने पढ़ी थी ना, भी इसमें कल पढ़ा था वो सब बारी बातें, तो उनके हिसाब से निष्कर्ष लिखा है, इस प्रकार साधर्मियों के दोषों को उजागर न करना और अपने गुणों में निरंतर वृद्धि करना उपब्रह्मण अंग है, और स्व और पर को मुक्ति के मार्ग में दृढ़ता से स्थापित करना स्थितिकरण अंग है। वास्तव में पर को तो हम कर ही क्या सकते हैं, लेकिन उपदेश के द्वारा खासकर जब समाधि मरण लेते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, तो परिणामों में विचलित बना आ जाता है, तो वहां उपदेशाधिक के द्वारा एक मुनि दूसरे मुनि को समझाते हैं, एक ग्रस्त दूसरे ग्रस्त को समझाते हैं, तो उसका नाम स्थितिकरण है। देखो ये निकालो ये अपनी किताब अनुशीलन, अपन ने अमृतचंद का तो पढ़ लिया, अब आचार्य जयसेन का पढ़ते हैं। आचार्य जयसेन द्वारा तात्पर्य वृत्ति में इन गाथाओं का लिखा गया अर्थ विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट करता है, वह इस प्रकार है, मिल गया, हाँ पेज बदलो। शुद्धात्म भावना रूप पारमार्थिक सिद्ध भक्ति से युक्त और मिथ्यात्व रागादि विभाव भावों का विनाशक सम्यक दृष्टि जीव उपगुहन अंग का धारी है, और मिथ्यात्व रागादि रूप उन मार्ग में जाते हुए अपने आत्मा को परम योग के अभ्यास के बल से शुद्धात्म भावना रूप निश्चय मुख्य मार्ग में दृढ़ता से स्थापित करने वाला सम्यक दृष्टि जीव स्थितिकरण अंग का धारी जानना चाहिए। ऐसे सम्यक दृष्टियों को उपगुहन कृत और अस्थितिकरण कृत बंध नहीं होता, अपितु पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा ही होती है। इसमें एक विशेषता तो यह है कि सिद्ध भक्ति से व्यवहार सिद्ध भक्ति या राग रूप सिद्ध भक्ति न लेकर शुद्धात्मा के अनुभव रूप निश्चय भक्ति ली गई है ना? और दूसरे स्थितिकरण अंग में शुद्धात्मा के अनुभव रूप मोक्ष मार्ग में स्वयं को स्थापित करने की बात कही गई है। देखो ये बाहर की बातें ही नहीं है, है ना? वो अब अपने सिद्ध भक्ति शब्द पढ़ा है तो अपन समझते सिद्धों की भक्ति करना है ना? अरे सिद्ध समान अपना जो भगवान आत्मा का स्वभाव है, उसके स्वरूप का जो चिंतन है और उसमें ही उपयोग की स्थिरता है, ये सिद्ध भक्ति है। रत्नकरण श्रावकाचार में अन्य धर्मात्माओं के दोषों को उद्घाटित नहीं करने को उपगुहन और मार्ग से चित अन्य साधर्मी भाजनों को धर्म मार्ग में स्थिरता कराने वाला स्थितिकरण अंग कहा गया है। इसमें दोनों ही पर पे घटित किए, है ना। प्रश्न, मूल गाथा और तात्पर्य वृत्ति में पांचवें अंग का नाम उपगूहन कहा गया है, किंतु आत्मख्याति में उसे उपबृंहण कहा गया है, इन दोनों में क्या अंतर है? उपगूहन का अर्थ होता है छुपाना और उपभ्रम का अर्थ होता है बढ़ाना। पांचवें अंग में जिनागम में दो नाम पाए जाते हैं, एक उपगूहन अंग और दूसरा उपभ्रंहण अंग। वस्तुतः बात यह है, दोषों को छिपाना या मिटाना और गुणों की वृद्धि करना, ये दोनों ही काम इस अंग में शामिल हैं। छुपाना माने मिटाना, इस छुपाने में दोष बना रहे और अपन प्रकट नहीं होने दें ऐसा लगता है, और मिटाने का अर्थ यह है कि वो दोष ही नहीं रहने देना। कितना अंतर आ गया है ना। दोषों को मिटाने या छुपाने की अपेक्षा इसे उपगूहन कहा जाता है, और गुणों में वृद्धि करने की अपेक्षा इसे उपभ्रंहण कहा जाता है। पुरुषाशुद्धि उपाय में उपभ्रंहण और उपगूहन दोनों की ही चर्चा है, और स्थितिकरण में स्व और पर दोनों के स्थितिकरण की बात कही गई है। ये तो मैं बता चुका ना, कहीं अकेले वृद्धि करने की बात है, अकेले स्व को, कहीं अकेले पर को, और कहीं दोनों को। दोनों में ही अपन चिग रहे हो तो अपने को स्थापित करना, पर चिग रहे हो तो पर को स्थापित करना, कहीं इन दोनों की बात है, कहीं अकेले पर की बात है और कहीं अकेले निज की बात है। तो अपन निष्कर्ष में ये निकालो कि दोनों की ही बात समझ लो, क्योंकि निश्चय और व्यवहार दोनों हो जाएंगे। पर को स्थापित करना व्यवहार हो गया और स्व को स्थापित करना निश्चय स्थितिकरण हो गया। ऐसे ही पर में दोष हो तो उनकी चर्चा न करके, और उसको गुणों को ऐसा नहीं कि गुण नहीं है और कह रहे नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, पर चोरी कर रहा हो। उदाहरण तो ऐसा विचित्र दिया है कि एक छुल्लक जी मंदिर में से मूर्ति चुरा के भाग रहे थे सोने की, क्या, और उसके पीछे जनता लग गई थी। अब वो सेठ जी का मंदिर था, तो सेठ जी फिर पूजा करने के लिए आ रहे थे, तो उनने देखा कि एक छुल्लक जी मूर्ति चुराकर भाग रहे हैं और जनता उन्हें पकड़ रही है पुलिस को देने के लिए। तो सेठ जी ने एकदम कहा, नहीं नहीं करो, ये मूर्ति इन छुल्लक जी से मैंने ही मंगाई थी, क्या है? लेकिन अपनी आपने कहानी ज्यादा है ना, और ऐसा कह करके और फिर चली गई जनता। तो फिर उनको समझाया कि तुम ऐसा नहीं करो, ये तो अच्छा नहीं है। पर इस चोर को चोरी कर रहा है और ये कहना कि इसने चोरी नहीं की, ये उपगूहन अंग है कि वो तो धर्मात्मा को किया जाता है, तो चोरी करने वाला वो धर्मात्मा है, वो छुल्लक के भेद में चोरी कर रहा है, ये तो और भी बड़ा बुरा है। तो वहां क्या समझाते हैं कि वो छुल्लक धर्म बदनाम हो जाता है। आज भी ये तर्क दिया जाता है कि यदि तुम मुनियों की में जो कमियां हैं उन्हें बताओगे अथवा उनको देख करके उन्हें नमस्कार आदि नहीं करोगे तो मुनि धर्म की निंदा हो जाएगी, क्यों? और इस नाम पर सब दोषों को हम छुपाते रहते हैं और बेजानते हैं कि अभी तो छुपाएंगे ही, अभी वो और निश्चिंत होकर करते रहते हैं। ये सही है क्या? तो ऐसा अर्थ नहीं है, माने वो कहानियां इतनी अतिरंजित हैं। अब वास्तव में स्थिति ऐसी बनी, इतिहास की दृष्टि से विचार करें ना, कि ये जो 10वीं शताब्दी से लेकर के और 20वीं शताब्दी के बीच में जहां से भट्टारक परंपरा का उदय हुआ 10वीं शताब्दी के पहले, और वो धीरे धीरे बहुत शुरू तो ऐसा हुआ था, अपन ने सर्व वो किताब है अपने ना, अपन ने टोडामल विकसित करते तो उसमें लिखा है कि सबसे पहले ये जंगल में नग्न रहते थे और शहर में आते थे तो कपड़ा पहन के आते थे क्या? पर वहां भी कोई जनता आती थी तो उस कमरे को अपने पैरों पर डाल के ढक लेते थे, बैठे बैठे ऐसे पहन के नहीं रखते थे, रहते तो नग्न ही थे, फिर धीरे धीरे पहन के रहने लग गए और फिर धीरे धीरे मठ बना के रहने लग गए, फिर धीरे धीरे पालकी में बैठने लग गए, फिर नौकर चाकर हो गया, फिर क्या हुआ इनने मठ बनाया तो जो बहुत खतरनाक बात कह रहा हूं, जितने जो निसंतान लोग होते हैं ना इनके बाल बच्चे नहीं होते तो वे अपनी संपत्ति मकान मकान वगैरह मंदिर को दे जाते हैं। क्यों? कि उनके परिवार में भतीजे भतीजे भाई माई के लड़के जो होते हैं तो उनसे उनको राग नहीं होता है, झगड़ा मगड़ा रहता है तो उसे किसी को देना नहीं चाहते हैं तो मंदिर को दे जाते हैं, मठों को दे जाते हैं। तो ये मंदिरों के पास जितनी संपत्ति है उसमें 75% ऐसी ही होगी, उनके इतिहास खोज के देखना आप पुराने मंदिरों में खासकर, नहीं तो एक एक मंदिर के बाद यहां एक मकान है वहां एक मकान है, यहां एक घर है वहां एक घर है, कहां से हो गए? वहां पुराने जमाने में दक्षिण भारत में किसान लोग ज्यादा थे, खेती करते थे, तो वे किसान लोग जो होते थे वो अपने खेत दे जाते थे क्या? अब भट्टारा खेतों को संभालते खेती कराते हैं तो धीरे धीरे वो ऐसे बन गए कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा इतिहास है। अभी देखो जब हमने टोडामल स्मारक भवन में आए तो दो उदाहरण देता हूं मैं। सागर के पास एक देवरी गांव है, वहां का एक भाई आया तो उसने हमसे कहा कि वहां हमारी 50 बीघा जमीन है, 50 हो 25 हो मतलब इतनी संख्या मुझे याद नहीं रहती है, ये हम आपको टोडामल स्मारक भवन को देना चाहते हैं, हमने देना चाहते हो तो बेच दो तो पैसा जमा करा दो। नहीं 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 बेचे नहीं, आप भी नहीं बेच सकते, तो हम जाके वहां खेती कराएंगे। मैंने कहा भैया पूरे भट्टारा का मन बने, आपको जानकर राष्ट्र जो हमारे जो गुरुजी थे जिनने पीएचडी कराए थे डॉक्टर देवेंद्र कुमार, तो यहां आए थे तो वो मुझे भट्टार के ही कहते थे, कब तुमको तो मिल गया तुम भट्टारक बन गए। मैंने कहा अब पक्के भट्टारक बने। मैंने वो जमीन ले ली, बिल्कुल इंकार कर दिया, गोदगा जी पादनी जी सबके पास गया वो, लेकिन मैंने कहा कोई संपत्ति यहां जाकर के सागर के पास लेना है? फिर यहां पर एक कोई अग्रवाल भाई थे उनके मकान में मंदिर था तो वो हमें मंदिर सहित मकान देने को तैयार थे, कहीं जबेरी बाजार में कहीं बहुत पीछे पड़े कि यहां आप एक अपनी शाखा खोल देना, यहां पाठशाला चलाना, ये कराना ये कराना, और मकान बेच तो सकते नहीं क्योंकि उसमें मंदिर है। हमने कहा नहीं लिया, हाथ जोड़ दिया, बहुत आराम में रहे। लेकिन एक है जबलपुर के पास मंडला, वहां एक भाई हमसे बिना ही कहे वो मर गई और हमारे नाम लिख गई स्मारक टेस्ट के नाम पे, अब वो संपत्ति वहां दुकानें मकान है, पर जिसके कब्जे में है वो कब्जा कर रहा है, कोई आता नहीं देता नहीं। कौन जाके रखा है, हम तो आज तक वहां गए नहीं देखने। ऐसे ये भट्टारकों की पोजीशन थी, वो भट्टारक लेते गए और वे बहुत बड़े जमींदार जागीरदार बन गए, फिर खेती करने लग गए, मकानों का किराया वसूल करने लग गए। अब आजकल सेवन गोल भट्टारक के पीछे कितनी संपत्ति है, देखो हर सब भट्टारक मठ के पास कितनी कितनी संपत्ति है, चारों तरफ खेत हैं, ये हैं वो हैं सब। अब समस्या क्या खड़ी हुई असली, कि वो भट्टारक अपने को साधु मानते हैं, ये दक्षिण भारत के विद्यार्थी यहां बैठे होंगे उनने सब देखा देखते होंगे, अब वो साधु मानते हैं अपने को और पंडिताचार्य न मालूम कैसी कैसी डिग्रियां लगाते हैं और फलाने फलाने आचार्य ऐसे लगाते हैं, اب وہ ان لوگوں کو کچھ لوگ توڈر مل جی جیسے انہیں سادھو ماننے کو تیار نہیں تھے تو ان کے پرتی ودروہ ہوتا تھا تو ان نے اس مدھی یوگ میں ایسی ہزاروں کہانیاں لکھی جیسی تو کہانی کا ایک ہی پیٹرن ہے ہزاروں کہانیاں ایسی ملیں گی جین دھرم میں کہ ایک زیادہ تر عورت ہے ایک لڑکی ہے وہ بیٹھی تھی منیراج آئے منیراج میں نے بھائی بھٹا رہا آئے تو اس نے ان کی اپیکشا کری ان کی طرف دیکھا نہیں ڈھنگ سے انہیں پڑگاہا نہیں ان کا سنمان نہیں کیا نمسکار نہیں کیا تو اس پاپ میں مر کے پھر وہ نرک گئی پھر آئیے ایک کوکری ہوئی سوکری ہوئی پھر نرک گئی ایک چار سے دفعہ نرک گئی چار سے دفعہ کوکری سوکری بھائی اور انت میں پھر جا کر کے ایک بہت گندی لڑکی کسی کے یہاں پیدا ہو گئی بالکل غریب کے گھر میں ایک اسٹائل پہ سینکڑوں کہانیاں ہیں پھر وہاں پر کسی نے اسے بتایا کہ تو نے منی راجوں کی نندا کی تھی اس کے پھل میں تو نے اتنے اتنے دکھ بھوگے ہیں اب تو ان کی وہ کر تو اس نے پھر منی راجوں کی خوب بھکتی کری پرشنسا کری آہار دان دیا تو پھر وہ سرک گئی پھر ایک دفعہ منس ہوئی پھر سرک گئی دو چار دفعہ اوپر گئی ایسے گوتے لگا پہلے ایسے لگائے تھے پھر ایسے لگائے تھے اور اسٹیل لنگ چھید کے منس ہو گئے مفت چلی گئی ایسی سینکڑوں کہانیاں ہیں کہ اس لیے کوئی بھی آدمی منی کی نندا نہیں کرے وہ کیسے ہی ہوں میں نے ان کی زبان بند کرنے کے لیے تو یہ سب مہلاؤں پہ کہانیاں کیوں لکھی گئی کیونکہ مہلائیں بہت ڈرپوک ہوتی ہیں اور بھوجن کی ویوستھا بھی وہی کرتی ہیں تو ان کے نشچنتائی سے بھوجن کی ویوستھا ہو گئی سمجھے نا ابھی آپ دیکھو ایک اسٹائل پر اور میں تو کہتا ہوں کہانی کی پنکتیاں بھی ایک سی ہوں گی کہاں سے شروع ہو بتاؤں جمبو دیپ دیپن میں سار اور بھرت چیتر جا میں سکھ کار ایسی پنکتی آئیں گی دس پانچ پنکتی آئیں گی پھر آئے گا ایک سمے بپولا چل تیر سمو شرن آیو مہابیر پھر وہ دس پانچ پنکتیاں آئیں گی پھر آئے گا کہ راجا سینک ان کے درشن کرنے کے لیے ہاتھی گھوڑے پہ بیٹھ کے گئے اور پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کی کہانی سناؤ کس کی منورما کی اتوا جو کچھ بھی ہو میں دادا نام بھی لینا چاہتا ہوں اور بھگوان نے کہانی سنائی اور وہ کہانی پھر ایسی کہانی تھی جو بتائے میں نے کہانی بتا دی نا بس اسی اسٹائل میں وہ کویتاؤں میں ایسی کہانیاں ہیں ہمارے بندیل کھنڈ میں سیل کتھا اور درشن کتھا دو کتھائیں چلتی تھیں اجینی لوگ آلہ اوجل پڑھتے تھے گا گا کر کے ساون کے مہینہ میں اور جینی لوگ سیل کتھا اور درشن کتھا پڑھتے تھے تو بھی کہانیاں ایسی ہی ہیں ایک دفعہ ہمارے دادا تو پڑھتے پڑھتے بچے ان کہانیوں کی وہاں تھا نا کہاں اتر پردیش میں ہاں ایٹا میں میں اس کی لمبی کہانی تمہیں نہیں سنانا چاہتا ہوں پر چھوٹی سی اتنی سی بات ہے کہ ایک عورت بہت سیلوتی تھی اور اس پر کسی نے کلنک لگایا تھا تو ایک نگری تھی اس نگری کے دروازے تھے بڑے بڑے وہ دونوں ہی بند ہو گئے اور ہزاروں اور لوگوں نے کھولے لیکن کھلے نہیں تو آکاش بانی بھائی کہ جو مہلا سیلوتی ہوگی وہ اس کو کھولے گی پیر لگائے گی تو یہ کھل جائیں گے تو سب ہزاروں مہلاؤں نے لگائے لیکن وہ نہیں کھلے پھر اس نے لگائے جس کو بات ہو رہا تھا نا اس نے پیر لگایا جو ایسا اور وہ ایک دروازہ کھل گیا تو اس کی سیل کی مہیما ہو گئی کہ دیکھو یہ پکی سیلوتی ہے تو ایک دروازہ آج تک بند ہے کہ کیوں کہ پھر کوئی باہر گئی ہوں گی مہلائیں وہ کہیں گی کہ نہیں ہم کھول دیتے اس میں کیا ہے؟ تو پھر تم کھول کے دیکھو. تو آج تک نہیں کھولے, بہت لوگوں نے کوشش کی. تو اس طرح وہ سیل کی مہیما اس مہلا کی بتائی. دادا نے یہ کہا کہ میرے سامنے وہ کبھی ہوتا تو میں اس کو ایک ٹاٹا مارتا, جھگڑا کھڑا ہو گیا. کیونکہ میں نے بھی کئی دفعہ سنائی تھی یہ کہانی موقع موقع پہ, لیکن وہ استھان دیکھا جاتا ہے, جگہ دیکھی جاتی ہے, اپنا پنڈ پاپ دیکھا جاتا ہے, اس میں کوئی کمی ہو جائے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے نا. اس میں یہ ہے کہ ایک کی سیل کی مہیما ہوئی کہ ساری مہلاؤں کو کسیل بتی بتا دیا. کیسی کہانی گڑی دیکھو, کہ ہزاروں مہلاؤں نے پہلے انہوں نے پیر لگایا, وہ نہیں کھلی تو وہ بے سیل بتی نہیں ہے, سدھ ہو گیا. اور ابھی نہیں, بھوشیہ میں بھی کوئی ایسا ابھیمان نہ کرے کہ میں سیل بتی ہوں, تو آج تک نہیں کھلے وہ. تو جب سے لے کے آج تک کوئی سیل بتی محل ہے. تو یہ سب کو ویوچارنی سدھ کرنے والی کہانی ہے کہ ایک محل آ کے سیل بتی سدھ کرنے والی کہانی. وہ ایک کہانی نہیں, ایسی سینکڑوں کہانیاں ہیں. پھر وہی ان کہانیوں کے ساتھ درباگ یہ ہے کہ وہ شروع وہاں سے ہوتی ہیں کہ بھگوان مہاویر نے سنائی اور راجا سینک نے سنی. تو تتواسو تو سمے سار کے شروع میں ایسا لکھا ہی نہیں ہے. تو سیدھی گاتھا آگے شروع بندت سب سدھے اور بات, تو یہ تو بھگوان کی کہی بات نہیں رہ گئی, اور بے کہانیاں سب بھگوان کی کہی کہانیاں ہو گئی. ابھی آپ جاؤ ادھر اور ان کے ویاخیان سننا, وہ اسی طرح کی کہانیاں آپ کو سنائیں گے. کہ بس کوئی آدمی ان کے دوست نہیں دیکھے, بس نئی طرح سے بہت تکلیف ہوگی. ایسا سنا سنا کر کے انہوں نے اپنی سرکشا کی, اور اس طرح سے یہ دھرم کی بات ہوئی. اس کو انہوں نے اپگوہن انگ بتایا. تم سمت اس لیے نا گرست ہو تو تم ابوان انگ ہو, اور کسی کے دوست بتاؤ نہیں, ڈھانکو ڈھانکو دوستوں کو, چھپاؤ, سمجھ گئے نہیں. اور اس لیے وہ دوستوں کو ڈھانکنا ارتھ ہو گیا. لیکن بھیا ہم سمدشتی ہیں نہیں نا, ہم نہیں چھپائیں گے کیونکہ ہم سمدشتی نہیں ہے. کند کندا چائے دیکھو, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنی کیا اپنے آتما ابھرنگن, اپنے آتما کی شکتیوں کو بڑھانا. بڑھانا مانے نرملتا روپ سے پرکٹ کرنا, اور گرتے ہوں تو گرنے نہیں دینا. تو نرنتر شبھوپیوگ سے سدھوپیوگ میں جانا, اور سدھوپیوگ سے گرے تو آنا. یہ تو منیراجوں پہ گھٹت ہوگا. پھر نیچے کے پانچ میں چوتھے گنستان والے میں جیسی جیسی بھومکا ہے اس کے انوسار انہیں گھٹت کرنا. دیکھو پنڈت جیتنجی چھابڑا بھاوارتھ میں اسے اس پرکار اسپشٹ کرتے ہیں. سمیک دشٹی اپگوہن گن یوکت ہے. اپگوہن کا ارتھ ہے چھپانا. یہاں نشچے نئے کو پردھان کر کے کہا ہے کہ سمیک دشٹی نے اپنا اپیوگ سدھ بھکتی میں لگایا ہوا ہے, اور جہاں اپیوگ سدھ بھکتی میں لگایا وہاں انیہ دھرموں پر دشٹی ہی نہیں رہی. دیکھو چھپانا شبد لکھ رہا ہے کیونکہ وہ لکھا تھا کیا کریں, لیکن اس کا ارتھ ایسا کر رہے جیتن چھابڑا. اس لیے وہ سمست انیہ دھرموں کا گوپنے والا اور آتم شکتی کا بڑھانے والا ہے. اس گن کا دوسرا نام ابھرنگن بھی ہے. ابھرنگن کا ارتھ ہے بڑھانا. سمیک دشٹی نے اپنا اپیوگ سدھوں کے سروپ میں لگایا ہے, اس لیے اس کے آتما کی سمست شکتیاں بڑھتی ہیں. آتما پشٹ ہوتا ہے, اس لیے وہ ابھرنگن گن والا ہے. اس پرکار سمیہ دشٹی کی آتم شکتی کی وردھی ہوتی ہے, اس لیے اسے دربلتا سے جو بند ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا, نرجرا ہی ہوتی ہے. یدپی جب تک انترائے کا ادے ہے تب تک نربلتا ہے, تتھاپی اس کے ابھیپرائے میں نربلتا نہیں ہے, کنتو اپنی شکتی کے انوسار کرمودے کو جیتنے کا مہان ادم برتتا ہے. دیکھو یہ بھٹارک لوگ ادھر ہی نہیں تھے, جے پور میں بھی تھے. جے پور پہلے جے پور نہیں تھا, یہ تو جنگل تھا. اور یہ آمیر اور سانگانیر دو نگر تھے. آمیر تھی راجدھانی, जहां पर राजा लोग जा रहे थे, मान सिंह वगैरह राजा थे ना यहाँ के, जिसने अकबर के इसको अपनी बहन दी थी जोधाबाई, वो मान सिंह आमेर के राजा थे। और सांगानेर जो है ना इधर जहां तुम्हारा कॉलेज है, उस सांगानेर में बहुत अच्छा शहर था जिसमें जैनियों की बस्ती बहुत थी। वहां भी हजार वर्ष पुराने मंदिर हैं। जयपुर को तो बने ही 250 वर्ष में। फिर एक जयसिंह नाम का राजा हुआ तो उसने ये जयपुर बसाया अपने नाम से, जयपुर जयसिंह का नाम से जयपुर, ये बीच में। तो ये जयपुर को व्यवस्थित ढंग से, इसका एक विद्याधर नाम का उसका इंजीनियर था उसके पास, उसने ये सारे नक्शे बनाए, प्लानिंग की, तो सीधे सीधे रोड, सीधी सीधी गलियां, और वहां से लोगों को लाला करके बसाया। तो दवेलियों की दुकान दवेली बाजार, तो हल्दी हल्दी की बेचने वालों की दुकान तो हल्दियों का रास्ता, जहां घी घी की दुकानें थी तो घी वालों का रास्ता, है ना, नानियों की दुकान थी तो नानियों का रास्ता, धोबी की दुकानें थी तो धोबियों का रास्ता, ऐसे नाम से रास्ता से नगर बनाए बिल्कुल व्यवस्थित। और ये चाकसू वाले बांगलों को एक चौक दे दिया कि तुम यहां रहो। चाकसू से गांव से लोग आए, टोडरमल जी के पूर्वज चाकसू से आए थे, इसलिए उनका यहां घर चाकसू के चौक में था। ऐसे जो यहां पर है ना चाकसू का चौक, फलाना चौक, तो ये ऐसे बसाया जयपुर को। तो धीरे धीरे वे दोनों ही उजड़ गए, सांगानेर और आमेर। तो ये जयपुर पनप गया और वे दोनों उजड़ गए, क्योंकि राजधानी यहां आ गई आमेर की। तो सांगानेर में टोडरमल जी के पूर्वज एक जोधराज गोदिका रहते थे, उनका एक लड़का भी था, क्या नाम था उसका, ऐसे था एक नाम ऐसी था, वे थे। तो वे बिल्कुल अध्यात्मी थे, और बनारसी दास का जो अध्यात्म आगरा में चला था उसके अनुयायी थे। तो आमेर के भट्टारक नरेंद्र कीर्ति, यहां भी भट्टारकों का राज्य था, सांगानेर में उनका चौमासा हुआ था। तो चौमासे में वो जोधराज गोदिका, जिनने संयुक्त कौमदी नाम की किताब लिखी है, बीच बीच में प्रश्न बहुत करते थे ये अध्यात्म संबंधी, तो वे भट्टारक जी जवाब नहीं दे पाते थे, तो वे बहुत परेशान होने लगे। लेकिन उनका बहुत साम्राज्य था, जनता उनके बहुत पक्ष में थी, तो उन जोधराज गोदिका को उनने भरी सभा में जूते मार मार कर पिटवा करके मंदिर में से निकाला। हाँ, उनके लड़के का नाम था अमरचंद गोदिका, जिसे भी लोग अमरा अमरा कहते थे। तो इन दोनों बाप बेटे ने, इनके साथ और 12-13 आदमी हो गए, और वो 250 पेड़ी का मंदिर है वो मंदिर बनाया। जो संपन्न थे जोधराज गोदिका, तो उनने अपना अलग मंदिर बना लिया, अभी भी 250 पेड़ी कहलाता है, छोटे नीचे का मंदिर है वहां पर सांगानेर में ही है ना, वो मंदिर उनने बनाया। और वे 12-13 आदमी मिलकर के वहां स्वाध्याय करते थे। तो वे कहते थे 13 लोगों ने मिलकर बनाया, इसलिए इसका नाम पड़ गया 13 पंच। और वे कहते जा 13 पंथ तुम संभाल, तो ऐसा उनको कहते 13 पंथ है, ये 13 पंथ है, ये हमारा पंथ नहीं है, समझे ना। तो उनने लिखा हे जिन 13 पंथ 13 है, ऐसा छंद लिखा ये, कि ये लोग कहते हैं, लेकिन हे जिनेन्द्र भगवान 13 पंथ जो है ना, 13 भगवान 13 पंथ वो 13 पंथ है, ये 13 पंथ 13 है। उन्होंने लिखा 12 पंथ और गिनाए, कोई ऐसा मानता है, कोई ऐसा मानता है, कोई ऐसा मानता है, कोई ऐसा मानता है, कोई क्षेत्र बाल पद्मावती को मानता है, कोई कुछ मानता है। और हे जिनेन्द्र भगवान 13 ये शुद्ध 13 पंथ 13 है। तो ये जयपुर में भी उनका बहुत आतंक था, मतलब इस एरिया में भी। लेकिन ये 13 पंथ की क्रांति बनारसी दास से शुरू हुई, और टोडरमल जी के जमाने में आते आते सारे उत्तर भारत में बिल्कुल फैल गई, और यहां सब भट्टारक की जड़ें उखड़ गई। अब कहीं कहीं सोनागिरी में छोटी सी गद्दी बची है, इसमें कोई कोई प्रभावशाली आदमी नहीं है, इन नागौर में भट्टारा की गद्दी बची है, अब अवशेष मात्र रह गए हैं। महावीर जी में भी एक ऐसी गद्दी लगी रहती है कोने में, गजा भट्टारा की गद्दी है, कोई आदमी नहीं है वहां। और अभी दक्षिण भारत में वो सुरक्षित है, अभी तुम लोग तैयार हो रहे हो तुम जाके वहां कोई झगड़ा करना, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। तुमने उन्हें उखाड़ने की कोशिश की बेटा, तुम उखड़ जाओगे, वे नहीं उखड़ेंगे। तुम तो उनसे बिल्कुल कोई वैर विरोध लिए बिना अपने तत्व की बात ही करना, समझे ना। ये तो एक कहानी थी, मैं तुमको सुना दी तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी जानकारी के लिए, समझे ना। पहलवानी मत दिखाना